नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डिजिटल डिजाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर डेविड हैरिस और सारा हैरिस की कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पाठ्य पुस्तक है। इसका विषय डिजिटल लॉजिक से लेकर प्रोसेसर संगठन तक की वह पूरी श्रृंखला है जिससे आधुनिक कंप्यूटिंग हार्डवेयर बनता है। पुस्तक पहले ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेटों के व्यवहार को आधार बनाती है, फिर कॉम्बिनेशनल तथा सीक्वेंशियल सर्किट, फाइनाइट स्टेट मशीन, अंकगणितीय इकाइयों, मेमोरी और माइक्रो आर्किटेक्चर तक आगे बढ़ती है। इसका केंद्रीय शैक्षिक लक्ष्य केवल अलग अलग परिपथों की परिभाषाएं देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि ये इकाइयां मिलकर एक वास्तविक MIPS प्रोसेसर कैसे बनाती है। वीरिलॉग और VHDL के उदाहरणों के माध्यम से हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज को सर्किट डिजाइन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। दूसरा संस्करण इनपुट आउटपुट, एम्बेडेड अनुप्रयोगों और व्यावहारिक इंटरफेसों पर भी ध्यान देता है। इसलिए यह पुस्तक डिजिटल डिजाइन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को दो अलग विषयों के बजाय एक सतत डिजाइन यात्रा के रूप में प्रस्तुत करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लॉजिक गेट से प्रोसेसर तक क्रमिक निर्माण की पद्धति। पुस्तक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने वाली संरचना है। यह सीधे इंस्ट्रक्शन सेट या प्रोसेसर प्रदर्शन से आरंभ नहीं करती, बल्कि बताती है कि बूलियन लॉजिक, लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर स्तर की सीमाएं बाद की हर डिजाइन निर्णय को प्रभावित करती है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक में आउटपुट केवल वर्तमान इनपुट पर निर्भर करता है, जबकि सीक्वेंशियल लॉजिक में रजिस्टर और घड़ी के कारण पूर्व अवस्था भी मायने रखती है। इस भेद को स्पष्ट किए बिना प्रोसेसर के कंट्रोल और डेटा पाथ को समझना कठिन होता है। पुस्तक मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एडर और फ्लिप फ्लॉप जैसे बिल्डिंग ब्लॉकों को अलग अभ्यास मात्र नहीं मानती। इन्हीं से निर्देश चुनने, डेटा मार्ग निर्धारित करने, परिणाम संग्रहित करने और अगली क्रिया नियंत्रित करने वाली बड़ी संरचनाएं बनती है। यह क्रम पाठक को सिखाता है कि जटिल हार्डवेयर को छोटे सत्यापित घटकों में विभाजित करना चाहिए। साथ ही यह समझ विकसित होती है कि किसी सर्किट की तार्किक शुद्धता पर्याप्त नहीं है, विलंब, ग्लिच और घड़ी संबंधी अनुशासन भी वास्तविक डिजाइन की विश्वसनीयता तय करते हैं। इस प्रकार पुस्तक अमूर्त लॉजिक और कार्यशील मशीन के बीच का संबंध ठोस बनाती है। दूसरा, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल डिजाइन और फाइनाइट स्टेट मशीन की भूमिका। डिजिटल प्रणाली में मेमोरी जोड़ते ही डिजाइन की चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि अब सर्किट को यह जानना होता है कि कौन सी घटना कब हुई और अगला कदम क्या होगा। पुस्तक लैच, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और घड़ी आधारित डिजाइन के माध्यम से इस समस्या को व्यवस्थित करती है। सिंक्रोनस डिजाइन में अवस्था परिवर्तन घड़ी के निश्चित किनारों पर होते हैं, जिससे संकेतों के फैलने के समय को नियंत्रित और विश्लेषित किया जा सकता है। इसके विपरीत असावधान असिंक्रोनस व्यवहार रेस कंडीशन या अनिश्चित परिणाम पैदा कर सकता है। फाइनाइट स्टेट मशीन इस विचार को डिजाइन भाषा देती है। इसमें वर्तमान अवस्था, इनपुट और अगली अवस्था के संबंध को स्पष्ट किया जाता है, ताकि नियंत्रण तर्क को डेटा पाथ से अलग देखा जा सके। मूर और मिली मशीनों का अंतर भी इसी संदर्भ में उपयोगी है, क्योंकि आउटपुट को केवल अवस्था से या अवस्था तथा इनपुट दोनों से उत्पन्न करने पर समय और व्यवहार बदलते हैं। पुस्तक का महत्व इस बात में है कि वह इन अवधारणाओं को केवल आरेख बनाने की तकनीक नहीं बनाती, इन्हें प्रोसेसर कंट्रोल, संचार इंटरफेस और क्रमबद्ध कार्यों के लिए पुनः प्रयोग होने वाली डिजाइन पद्धति के रूप में रखती है। तीसरा, MIPS प्रोसेसर के माध्यम से डेटा पाथ और कंट्रोल का एकीकरण। पुस्तक का केंद्रीय प्रयोग एक वास्तविक MIPS प्रोसेसर का निर्माण है। यह चुनाव इसलिए शिक्षाप्रद है क्योंकि सीमित और स्पष्ट इंस्ट्रक्शन सेट के भीतर भी प्रोसेसर के सभी आवश्यक प्रश्न सामने आते हैं। किसी निर्देश को मेमोरी से लाना, उसका अर्थ समझना, रजिस्टरों से ऑपरेंड पढ़ना, अंकगणितीय या तार्किक क्रिया करना, मेमोरी तक पहुंचना और परिणाम वापस लिखना, इन सब के लिए समन्वित डेटा पाथ चाहिए। इसके साथ कंट्रोल यूनिट को हर निर्देश के लिए सही मल्टीप्लेक्सर चयन, रजिस्टर लेखन, मेमोरी क्रिया और प्रोग्राम काउंटर परिवर्तन तय करना होता है। पुस्तक सिंगल साइकिल, मल्टी साइकिल और पाइपलाइन संगठन के अंतर को इस निर्माण प्रक्रिया में रखती है। सिंगल साइकिल मॉडल सरल होता है, पर उसकी घड़ी सबसे धीमे निर्देश से बंधती है। मल्टी साइकिल डिजाइन हार्डवेयर संसाधनों का पुनः उपयोग कर सकता है, जबकि पाइपलाइन कई निर्देशों के चरणों को ओवरलैप कर थ्रूपुट बढ़ाती है। लेकिन पाइपलाइन में डेटा, कंट्रोल और संरचनात्मक हैजर्ड जैसे नए नियंत्रण प्रश्न पैदा होते हैं। इस उदाहरण से पाठक समझता है कि आर्किटेक्चर का प्रदर्शन, लागत और जटिलता हमेशा परस्पर जुड़े समझौते हैं। चौथा, वीरिलॉग और VHDL द्वारा हार्डवेयर को वर्णित और जांचने का अभ्यास। हार्डवेयर डिजाइन को केवल ब्लॉक डायग्राम तक सीमित रखने से विद्यार्थी यह नहीं सीख पाता कि डिजाइन को लागू और परखा कैसे जाता है। पुस्तक वीरिलॉग और वीएचडीएल को पूरे विषय में शामिल करती है, जिससे लॉजिक समीकरण, रजिस्टर ट्रांसफर व्यवहार और मॉड्यूल संरचना का संबंध वास्तविक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन से बनता है। इन भाषाओं में प्रोग्राम जैसी संरचना दिखाई दे सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य क्रमिक सॉफ्टवेयर निर्देश चलाना नहीं बल्कि समानांतर डिजिटल परिपथ का वर्णन करना है। यह अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ब्लॉक प्रक्रियाओं, कॉम्बिनेशनल असाइनमेंट और टेस्ट बेंच के माध्यम से पाठक डिजाइन के अपेक्षित व्यवहार तथा समय संबंधी शर्तों को स्पष्ट कर सकता है। सिमुलेशन से गलत कंट्रोल संकेत, अपूर्ण अवस्था संक्रमण या असंगत आउटपुट को चिप या FPGA पर भेजने से पहले पकड़ा जा सकता है। पुस्तक का हाथों से करने वाला दृष्टिकोण इसीलिए उपयोगी है कि पाठक गेट स्तर की अवधारणा और संश्लेषण योग्य मॉड्यूल के बीच संबंध देखता है। हालांकि भाषा सीखना अपने आप में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन की गारंटी नहीं है। सही आर्किटेक्चर, स्पष्ट टाइमिंग और व्यवस्थित सत्यापन फिर भी आवश्यक रहते हैं। पुस्तक इन आयामों को एक ही डिजाइन अनुशासन का हिस्सा बनाती है। अंत में मेमोरी, इनपुट आउटपुट और प्रदर्शन सीमाओं का व्यावहारिक संदर्भ, प्रोसेसर को समझना केवल ALU और कंट्रोल यूनिट को समझना नहीं है, वास्तविक सिस्टम में निर्देश और डेटा मेमोरी से आते हैं। बाहरी उपकरणों के साथ संवाद होता है और प्रदर्शन अक्सर मेमोरी पहुंच की लागत से सीमित होता है। पुस्तक मेमोरी सिस्टम, कैश और प्रदर्शन विश्लेषण को प्रोसेसर डिजाइन के स्वाभाविक विस्तार के रूप में रखती है। कैश का मूल उद्देश्य तेज लेकिन छोटी मेमोरी में हाल में या निकट भविष्य में उपयोगी डेटा रखना है। इसकी प्रभावशीलता लोकेलिटी पर निर्भर करती है और कैश मिस होने पर तेज प्रोसेसर को भी धीमी मुख्य मेमोरी की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। दूसरा संस्करण इनपुट आउटपुट को सामान्य प्रयोजन प्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर दोनों के संदर्भ में आगे बढ़ाता है। RS-232 SPI इंटरप्ट, मोटर नियंत्रण, वायरलेस संपर्क और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि डिजिटल लॉजिक को भौतिक दुनिया से जोड़ने के लिए प्रोटोकॉल, समय और नियंत्रण की जरूरत होती है। इंटरप्ट विशेष रूप से यह बताता है कि प्रोसेसर को लगातार बाहरी घटना जांचने के बजाय आवश्यक समय पर अपना सामान्य प्रवाह बदलना पड़ता है। इस कवरेज से पाठक को चिप के भीतर की संरचना और पूर्ण एम्बेडेड सिस्टम के बीच का व्यावहारिक संबंध दिखाई देता है। निष्कर्ष में, डिजिटल डिजाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर उन स्नातक विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो डिजिटल लॉजिक और कंप्यूटर संगठन को एक संयुक्त पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ रहे हैं। यह स्वयं अध्ययन करने वाले आरंभिक हार्डवेयर उत्साही, एम्बेडेड सिस्टम सीखने वालों और संदर्भ सामग्री चाहने वाले कार्यरत इंजीनियरों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। पाठक को बूलियन लॉजिक की आधारभूत समझ और गणितीय प्रतीकों से सहजता लाभ देगी, लेकिन पुस्तक का क्रम अपेक्षाकृत नए पाठक को भी आगे बढ़ने का मार्ग देता है। इसका व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक अलग अलग सर्किटों की सूची याद करने के बजाय उनके बीच कारण संबंध देखता है। रजिस्टर, ALU, कंट्रोल, मेमोरी और इनपुट आउटपुट किसी मशीन में क्यों और कैसे जुड़े हैं, यह समझ डिजाइन की त्रुटियां पहचानने तथा नए सिस्टम का विश्लेषण करने में सहायक होती है। समान विषय की कई पुस्तकों में या तो डिजिटल लॉजिक पर बहुत अधिक जोर होता है या वे आर्किटेक्चर को ऊंचे अमूर्तन स्तर पर प्रस्तुत करती है। हैरिस और हैरिस की पुस्तक की अलग पहचान इन दोनों स्तरों को एक ही MIPS निर्माण परियोजना से जोड़ना है। वीरिलॉग और VHDL का समावेश इस पुल को और उपयोगी बनाता है, क्योंकि पाठक अवधारणा को हार्डवेयर वर्णन और परीक्षण तक ले जा सकता है। स्पष्ट आरेख, क्रमबद्ध व्याख्या और प्रदर्शन तथा समय की वास्तविक सीमाओं पर ध्यान इसे केवल परीक्षा केंद्रित पाठ्यपुस्तक से अधिक डिजिटल प्रणालियों को सोचने का संरचित आधार बनाते हैं। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डेविड हैरिस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।